Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बीमारियां हमारी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी लोग मिलकर हमें दुखी करना चाहें, लेकिन अगर हम खुद अंतर आत्मा से खुश हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक राह मिलती ही रहेगी जिससे आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो खुशी को अपनी ज़िंदगी का गहना बनाइए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमारा पिछला एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से बुजुर्गों की जिंदगी, जो कि हम कहते हैं बहुत ज़्यादा निरस हो जाती है, हमने उसका एक नया मायना क्रिएट किया। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, कलरफुल बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहल हमारे खुद की अंतरात्मा से ही होती है। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि कई बार ऐसा होता है कि जो आसपास के रिलेटिव्स होते हैं बुज़ुर्गों के, वो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, चाहे वो टाइम के थ्रू हो, चाहे उनके साथ टाइम स्पेंड करने की बात हो, चाहे उन्हें दो शब्द मीठे बोलने की बात हो। लोगों के पास टाइम नहीं है बेसिकली, या फिर मैं कहूँ कि लोग टाइम नहीं निकालते हैं। ऐसे में बुज़ुर्गों के लिए, एक बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके हिसाब से अपने रिलेटिव्स का कितना बड़ा रोल होता है?
मांगने से भीख भी नहीं मिलती। देखिए, हाँ, आज के समय में हर कोई बिजी है
जी,
और हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को परस्यू करे, और उसमें ऐसा नहीं है कि लोग सोचते नहीं हैं दूसरों के बारे में, ख़ासतौर पे जो आपके अपने हैं
जी।
लेकिन अगर वो एक बोझ के रूप में उन्हें लेना पड़ता है, या ड्यूटी के रूप में करना पड़ता है, या क्योंकि बार बार कहा जा रहा है इसलिए करना पड़ता है, या बुज़ुर्ग उनसे मांग रहे हैं उनका समय, उनका प्यार, उनकी इज्जत, तो फिर वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए।
ट्रू।
देखिए, पहली चीज़, कोई जानबूझ के किसी को दुखी करना नहीं चाहता। मेरे हिसाब से एटलीस्ट दुखी करने के लिए भी समय चाहिए।
बिल्कुल।
और किसी के पास समय नहीं है,
और बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी चाहिए।
जी हाँ,
क्योंकि आपको मतलब सोचना पड़ता है किस तरह से आप सामने वाले व्यक्ति को तंग कर सकते,
और मिलेगा क्या।
एग्जैक्टली।
हम ये बात भूल जाते हैं कि अगर अपने परिवार में एक व्यक्ति दुखी हो रहा है तो फिर उसको सुखी करने के लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा। हम उसे तंग कर रहे हैं कि वो बीमार हो जाए, जब वो बीमार होगा तो उसे ठीक करने के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई करना नहीं चाहता। इट्स जस्ट कि कई बार एक्ट्स ऑफ ओमिशन, यानी बिना जानबूझ के उनको इस तरफ ध्यान गया ही नहीं। या कई बार एक्ट्स ऑफ कमीशन, जिसमें कि वो अपनी में ही ज़्यादा सीमित है और बुज़ुर्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ भी ध्यान दें ज़्यादा। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ की, वो अलग व्यक्तियों द्वारा अलग रूप से होगी।
करेक्ट।
मान लीजिए हम एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाए अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, कि वो हमारे पास आना चाहें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जब वैसा होगा तो फिर वो एक सेंस ऑफ पर्पस भी आपको देगा, वो सेंस ऑफ ड्यूटी ना रह के सेंस ऑफ ब्यूटी बन जाएगी वो आपका इंट्रैक्शन।
वेरी नाइस।
यहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स, और एक बहुत बड़ा उसका एक बैकग्राउंड अगर देखें तो रहा है कि इस समय अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो जो उसने अपने बचपन में देखा वो आज से 60 साल पहले का था
जी।
उस समय समाज अलग था, उस समय लोगों के पास बहुत समय था, और समय के साथ साथ क्लोज नेट फैमिलीज थी। फैमिलीज आमतौर पर इकट्ठी रहती थी क्योंकि इकट्ठे सपोर्ट करना आसान हो जाता है। तो उन्होंने जो अपने बचपन में देखा, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने उस समय जो किया वही दूसरे लोग उनके साथ इस समय करें। लेकिन सारे संदर्भ बदल चुके हैं, समाज बदल चुका है, जो बहुत छोटी जगहें थी वो बड़े बड़े टाउन्स हो चुके हैं, हर किसी के पास बहुत कुछ करने को है, अगर काम करने को नहीं है तो टेक्नोलॉजी के द्वारा एंटरटेन करने को है, हर किसी के अपने अपने फ्रेंड्स हैं, और हर पाँच, पहले तो 20 साल कहते थे, पर अब हर 5 साल में जनरेशन बदल जाती है। जनरेशन बदलने का मतलब है कि सोच बदल जाती है, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ कि बुजुर्ग व्यक्ति की सोच वहीं पे अटकी रहनी चाहिए जो 8 से 50 साल पहले थी। वो भी बदल सकते हैं, वो अगर चाहें तो बहुत सारी नई चीज़ें अपने बच्चों को या स्पेशली ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखा सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से ही करो सब कुछ, मेरे हिसाब से बैठो, मेरे पास आके बैठो, चाहे मैं बात ना करूं लेकिन तुम मुझसे करते रहो, तो अभी वो समाना नहीं रहा।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि बुजुर्गों के बारे में अगर बात करें, वो अपने आप को अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाए जितना मुझे लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही अगला जनरेशन भी सोचेगा, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप में थोड़ी चेंजेस भी हो। लेकिन मैं सपोर्ट क्यों करती हूँ बुज़ुर्गों को, क्योंकि मुझे लगता है कि गलती उनकी नहीं है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक तरीके से जी है। अब अगला जनरेशन अगर उन्हें फोर्स कर रहा है चेंज होने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको एक झिझक भी महसूस होती है, क्योंकि हम जो करते आते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब हैबिट्स को बदलना इतना ईजी नहीं होता, खास करके अगर वो संस्कार बन जाए तो।
मैं भी बुजुर्गों को पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद या तो वहाँ पहुँच गया हूँ या पहुँचने वाला हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ आपका एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर हम ये नाटके रहें कि हैबिट्स नहीं बदल सकते, या ये नाटके रहें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो किया वही सही था और इसी रूप से हर चीज़ हो सकती है, तो सीखने के लिए हर समय बहुत कुछ मिल सकता। लेट अस नॉट फॉरगेट कि हर बच्चे ने बुजुर्ग बनना, और अगर ये सीख हम शुरुआत से देखें कि मुझे प्लान करना है कि किस प्रकार से किसी भी सिचुएशन में मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो आप साइड में हो जाएंगे, या आप उदास हो जाएंगे, और या फिर आप रोज रोते रहेंगे, दूसरों को रुलाते रहेंगे। तो एक चॉइस होती है हम सब के पास, वो चॉइस को मजबूरी से या एक्सरसाइज करें या स्वेच्छा से, ये हम पे डिपेंड करता है। आई वुड ऑल्सो से कि हाँ, अगर आपके सर पे बन आई है और उस समय चेंज होना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो तो बात हर चीज़ में है। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो अगले दिन आप 10 लाख नहीं निकालेंगे, 20 साल बाद शायद वो 10 लाख निकल के वापस आए। तो अगर आप ये चीज़ 10 साल पहले ही सोचना शुरू करें, अपनी हॉबीज़ को थोड़ा बढ़ाना शुरू करें, ये प्लान शुरू करना करें कि मैं जब और 10 साल में बुजुर्ग अवस्था में पहुंचूंगा तो मेरे बच्चे कहाँ होंगे, उनके साथ मुझे उसी रूप का एक रिश्ता तय करना है और सीखना है रादर देन हर समय सिखाना है, तो वो अगर सोच थोड़ी सी पहले से ही बदलनी शुरू हो जाएगी तो रिश्ते खूबसूरत हो सकते हैं। प्लस देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि परिवार में अगर एक व्यक्ति परेशान है तो दूसरों को उनके पास आना पड़ता है।
करेक्ट।
लेकिन अगर वो मजबूरी में आते हैं तो फिर वो उतने ही समय के लिए आएंगे जितने समय में इमरजेंसी से डील करना, बाकी समय में हट जाएंगे। लेकिन अगर एक बुजुर्ग ये सोचे कि उसकी जिंदगी के अलग अलग हिस्से हैं, एक हिस्सा है जिसमें वो खुद पूरा सक्षम होना चाहिए, जहाँ पे कि उसके लिए, और वहाँ पे चाहे आप थोड़े से बीमार भी हैं लेकिन आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अकेले, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं अकेले, टेलीविज़न देख सकते हैं अकेले, अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सीख ली है तो उसके बाद दुनिया के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं अकेले, इसके लिए आपको बाकियों की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल।
तो काफी समय अगर आप इन चीजों में बिता रहे हैं तो आप वैसे ही अपने आप भरा पूरा महसूस करेंगे। दूसरा हिस्सा है कि जहाँ पे हम अपना शारीरिक ध्यान रखते हैं वहाँ पे भी दूसरों की कोई खास जरूरत नहीं है।
करेक्ट।
अगर मेरी डाइट ठीक है, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं अपने आप को काफ़ी एक्टिव अगर रखता हूँ, मैं अपने खान पान के साथ साथ सोच का भी ध्यान रखता हूँ कि मेरे विचार क्या हैं जो चल रहे हैं, जो मुझे खा रहे हैं या मुझे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें बाहर किसी वाले की जरूरत नहीं है।
करेक्ट।
एक थोड़ा सा ही समय बचता है जहाँ पे कि आपको किसी और के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत होती है।
करेक्ट।
अगर आप हर समय चाहते हैं कि एक दरबार की तरह से लोग आपके आसपास बैठे रहें तो वो नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं बल्कि दूसरों को भी देते हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आपने उसकी किताब से उसका लेसन पढ़ लिया और फिर अगले दिन उसको कहा कि मैं तुम्हें प्रिसाइज करके और उसको सुनाऊंगा तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा, स्वतः ही बच्चा आपके पास आना चाहेगा।
बिल्कुल।
या आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि दूसरों को फ़ायदा होता है, आप अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उनके काम में मदद करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पास आके आपके एडवाइस को ज़रूर लेना चाहेंगे। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान खिंचा रहे तो बाकी लोग नहीं आते। और मान लीजिए परिवार में नहीं भी हैं, बिजी हैं, या कई जगहों पर मान लीजिए बच्चे छोड़ के चले गए हैं किसी और जगह पे काम करने के लिए और आप अकेले हैं, या आप किसी और देश में रहते हैं और वहाँ से बच्चे अलग रहते हैं आपसे, तो और ख़ासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये एक नॉर्म सा ही है कि हर व्यक्ति अकेला रहता है, तो वहाँ पे आपके आसपास का जो समाज है या सोशल एक्टिविटीज़ है जो हर कल्चर में होती हैं, कुछ आध्यात्मिक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो उनके साथ जुड़कर सिर्फ आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि मैं कुछ दे रहा हूँ, बल्कि लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो एक अल्टरनेट फैमिली, सरोगेट फैमिली इसको बोलते हैं, वो बननी आपके लिए शुरू हो जाएगी।
करेक्ट।
उसमें आपको फिर ये कभी भी अभाव, अकेलापन या चिंता वो नहीं होने की जरूरत है।
डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मी टाइम अर्थात अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। कई बार हम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो कंपेनियनशिप होती है वो होती है खुद के साथ। हमें अगर खुद के साथ में खुश रहना सीख ले तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुज़ुर्गों के लिए मी टाइम में क्या करना चाहिए उन्हें, जिससे उन्हें कभी भी खुशी महसूस हो और लोगों के बारे में वो ज़्यादा सोचे ना।
देखिए, मी टाइम एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस बचपन से होनी पड़ती है।
अच्छा, ओके।
क्योंकि ये एक स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है ब्रेन के अंदर कि अब हम इतने साल के हो गए, अब मैं मी टाइम में शुरू हो जाऊंगा। रादर, अगर आपने कभी भी अपने साथ जीना नहीं सीखा है तो जैसे ही काम ख़त्म होता है या आप रिटायर होते हैं या स्वेच्छा से काम से हट जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि पहले आपने कभी अपने आप को फेस ही नहीं किया। साइलेंस में आप कभी बैठे ही नहीं, तो वो विचार जो हैं वो अचानक बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और कई बार लोगों को उससे बहुत घबराहट होनी शुरू हो जाती है। मी टाइम में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किस क्वालिटी का, किस पर्पज़ का आपका मी टाइम है।
अच्छा।
अगर कोई प्लान नहीं है और आप अकेले बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर नकारात्मक ही विचार चलेंगे।
बिल्कुल।
अनलेस आप उन विचारों को एक दिशा देने के सक्षम हो और आप उस समय में ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अभी भी कर सकते हैं और किस तरह से पुराना छोड़ सकते हैं और किस प्रकार से मैं अपने विचारों को सकारात्मक बना सकता हूँ, अगर उसके लिए प्लान करके करना शुरू करते हैं तो वो मी टाइम अच्छा रहता। और अगर वो अकेले बैठे हुए कि क्या थी ज़िंदगी, क्या सोचा था, क्या हो गया, मैंने बच्चों के लिए ये किया, उसकी एक लिस्ट बना लिया आपने, बच्चों ने मेरे लिए ये नहीं किया उसकी लिस्ट बना लिया आपने, तो वो मी टाइम जो है बहुत घबराहट वाला होगा।
बिल्कुल।
बट एक अच्छी बात ज़रूर है कि सामाजिक रूप से भी आमतौर पे ये सोचा जाता है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो थोड़ा सा अपने बारे में, आध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। उसका पर्पस अगर देखें तो ये होता था कि अभी आपके पास और कुछ नहीं है, तो ये एक फोकस है।
करेक्ट।
प्लस जीवन अंत की तरफ आ रहा है अगर, तो आपने जीवन में क्या किया उसका एक आंकलन करके, और अभी भी समय फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है ये आप किसी भी उम्र पे नहीं कह सकते, लेकिन एक मेंटली थॉट होता है कि अच्छा अभी कुछ समय है, उस समय में जो जो नहीं किया उसको हम ठीक कर लें। तो वहां पे मी टाइम जो है, और मी टाइम में भी कुछ समय बिल्कुल अपने अकेले के साथ, कुछ ऐसा समय जहाँ पे कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे भी अपने लिए कर रहे हैं अगर, तो वो भी मी टाइम का हिस्सा हो गया। अगर आप अपनी सेहत के लिए कुछ कर रहे हैं, या जैसे कि वॉक कर रहे हैं, तो उस फोकस में आप आसपास की जो खूबसूरत चीज़ें हैं जो नेचर ने दी हैं उसका भी आनंद उठा रहे हैं, तो वो भी मी टाइम हो गया। आप अगर किसी की मदद करने वाले हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, वो भी आपके लिए मी टाइम हो गया। तो वेरी राइट जो आपने कहा कि अगर हम खुद से दोस्ती कर लें और जो पहले हो चुका ज़िंदगी में उसके लिए खुद को या दूसरों को माफ़ कर लें, हिसाब किताब ख़त्म कर लें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इमोशनली, तो फिर आप अचानक बहुत अपने आप को लिबरेटेड महसूस करते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर ऑल्सो इज़ कि अनलेस कोई हादसा हुआ हो, तो ज़्यादातर बुज़ुर्गों के पास इतना ज़रूर होता है कि वो अपना ख्याल इकोनॉमिकली भी रख सकें, या रहने के लिए जगह होती है
जी
वहाँ पे। हाँ, कई बार ये ज़रूर होता है कि आज के समय में प्रॉपर्टीज़ की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से घर में क्ले हो सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी आपने एक सही आंकलन करके सबको साथ में चल के और सबको क्लियर कट बताया हुआ है और अपने लिए भी कुछ रखा हुआ है
जी,
तो आमतौर पे वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो दूसरे सोचेंगे कि आप जल्दी से जल्दी हटें क्योंकि कोई आपको पसंद नहीं करता। बट आई वुड से कि पहले जो भी हुआ हो उसकी शुरुआत थैंक यू और सॉरी से हो सकती है। एक नई शुरुआत के लिए आप जो जो किसने आपके लिए अच्छा किया हो, और किसी भी व्यक्ति को आप ले लें, कुछ ना कुछ उसने आपके लिए अच्छा ज़रूर किया होगा।
बिल्कुल।
तो उन्हीं चीज़ों में जो जो ठीक नहीं थी के बजाय जो कुछ थोड़ी सी भी ठीक रहीं, कम से कम वो ठीक रहीं, उसके लिए अगर आप स्पष्ट भाषा में दूसरे को कह देते हैं तो एक नया हिसाब किताब हमेशा शुरू हो सकता। बाय एंड लार्ज हमारे समाज में बुज़ुर्गों का अब भी काफ़ी मान होता है।
करेक्ट।
लेकिन हाँ, एक फ़र्क जो आया है कि वो मान ऑटोमेटिक नहीं है, वो मान अब कंडीशनल हो गया है कि वो रिस्पेक्ट आपको अपने चाल चलन के द्वारा एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ इतने साल मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं हर समय गलत बातों में भी आपको रिस्पेक्ट दूँ, ये शायद नहीं होगा। एंड आई एम श्योर कि बुज़ुर्ग ये नहीं चाहते होंगे कि दूसरे लोग दया करके उनके ऊपर कुछ करें, पर उनको जब खुद लगे कि हाँ ये उनका एक तरह से हक है जो उन्होंने कमाया है, और चीज़ों के साथ साथ ये भी उन्होंने गुडविल भी कमाई है दूसरों के साथ, परिवार के साथ, तो फिर जब वो मिलती है तो माहौल एक अलग रूप से बन जाता है।
डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि इस समय पर सबसे बड़ा जो फियर होता है वो होता है डेथ का। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा फियर है जिसे वो हर दिन जीते हैं, अगर उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अब मैं इतने ही समय रहूँगा इस दुनिया में, ये एक ऐसा फियर है जिससे हर इंसान डरता है। अगर इस तरह की सिचुएशन है किसी बुज़ुर्ग के पास, तो उनके लिए आपकी क्या राय है, किस तरह से वो अपने जो भी दिन बचे हैं उन्हें सही ढंग से यूटिलाइज करें जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया।
देखिए, फियर ऑफ डेथ एक्चुअली किसी भी उम्र में हो सकता है।
करेक्ट।
और सच्चाई ये भी है कि किसी को नहीं पता है कि डे ऑफ डेथ कौन सा है।
एब्सोल्युटली।
इट कैन बी एट एनी एज। हाँ, समय के साथ साथ आंकड़े ज़रूर ये कहते हैं कि एक ख़ास उम्र में आके डेथ्स ज़्यादा होती हैं।
करेक्ट।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ उसी के खौफ में जिए, क्योंकि फिर आप जी नहीं रहे हैं।
ट्रू।
फिर तो आप डेथ की शैडो में रह रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, क्योंकि या तो आप यू कैन लिव और यू कैन प्रिपेयर टू डाई।
करेक्ट।
आप दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। सो आई वुड से वी शुड कंटिन्यू टू लिव इवन अप टू द लास्ट डेट।
अच्छा।
देखिए, बीमारियां जहां तक हैं, फेटल इलनेसेस, फेटल इलनेसेस इन द सेंस कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसकी वजह से पता है कि अगले 10-15 दिन में कुछ हो जाएगा, बहुत कम बीमारियां ऐसी।
ओके।
बाय एंड लार्ज अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखने के हर समय प्रयास करते रहते हैं तो ये सडनली आने वाली जो बीमारियां हैं, एंड आई वुड से कि अगर वो सडनली आ रही है, 15 दिन से ज़्यादा आपके पास नहीं है, तो वो लंबा प्रोसेस जो फियर ऑफ डेथ की आप बात कर रहे हैं वो शॉर्टकट हो गया। वन डजंट हैव टू देन बॉदर टू मच अबाउट इट। कई बार जो डेथ होती है वो आमतौर पर हम ये नहीं सोचते कि वो मेरे साथ होगी, यूजली हम सोचते हैं किसी और के साथ होगी।
करेक्ट। खुद से रिलेट करना ये बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि बहुत ज्यादातर लोगों को कष्ट होता है
जी
ये सोच के कि जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो मेरे बहुत करीब हैं या जिस जगह पे मैं हूँ, वो सब कुछ समय के बाद इस रूप में मेरे साथ नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पर अगर इस चीज़ को भी समझ लें कि If you have an illness जो कि चल रही है
जी,
जरूरी नहीं है कि आप इतने दिन बाद मरेंगे। Nobody can predict that.
Absolutely.
No doctor.
True.
वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसमें compared to other people जिनके साथ ये बीमारी नहीं है, आपके chances क्षीण होने के, ज़्यादा बीमार होने के या death के अधिक हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हम रोज जिंदगी जी रहे हैं? अगर हम रोज जिंदगी जी रहे हैं
जी,
तो मैं एंड ऑफ द डे इतना सेटिस्फाइड होना चाहूँ कि मुझे अगर कुछ हुआ नींद में या अगले दिन, मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा मलाल ना हो।
करेक्ट।
फैमिली में जब डेथ होती है, एंड दैट डज हैपन मोर इन दिस एज ग्रुप, वहाँ पर कोई भी रिश्तेदार हो, पर अगर कोई बहुत क्लोज हो, जैसे हस्बैंड वाइफ या कोई बच्चा,
exactly.
तो वो फिर आपको सामने दिखती है। और कई बार जब कोई आसपास आपके, ख़ास तौर पे ब्रदर सिस्टर्स, क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ ऐसा होता है, तो आप अपने आप को उस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हो।
बिल्कुल।
आई वुड से देर आर 3 or 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि इस चीज़ से उभरने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू रियलाइज कि डेथ इज अनसर्टन। ओनली थिंग सर्टन इज कि जब तक डेथ नहीं आती तो मैं जिंदगी को कैसे जीता हूँ। तो उसको हर क्षण अच्छे रूप से जीने की शुरुआत कर लें। सेकेंड इज कि जब तक कुछ नहीं हुआ
जी,
तब तक वो सिर्फ मेरे मन में एक भय के रूप में, तो उसके लिए मुझे यही है कि अभी अगर मैं उस पर फोकस करूँगा तो मैं इस भय के साथ जी सकता हूँ। और अगर मैं सही आंकलन करके जो जो उसके लिए करना है हेल्थ वाइज वो ज़रूर करूँ, पर बाकी समय जो बचा हुआ है उसको अच्छी तरह से जीऊँ। तीसरा एक और है जो कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।
ओके।
देयर अवेयर कि उनकी डेथ होने वाली है, और एंड तक वो और उनके फैमिली मेंबर्स किस प्रकार से अच्छा जीवन जी सकते हैं और उस एक चीज़ को ट्रांजिशन के रूप में देख सकते हैं, वो होते हुए मैंने लोगों को देखा है। और जिस माहौल में वैसा होता है
जी,
उसमें बाद में लोगों को उस चीज़ के बारे में बहुत ही डर के रूप से या उदासी के रूप से फिर वो नहीं होता।
दिस इज सुपर्ब डॉक्टर साहब। आज का जो हमारा एपिसोड रहा है, हमने कुछ उन बातों पर रोशनी डाली जिससे हमें पता चला कि अगर बुजुर्गों की ज़िंदगी उतनी भी निरस नहीं होती जितना आज तक हम मानते आए। साथ ही साथ हमने ये जाना कि खुशी ये किसी भी उम्र में कायम की जा सकती है, और आपके अंदर में अगर खुशी है, एक्साइटमेंट है ज़िंदगी को जीने का, तो आप भले ही कितने भी बुज़ुर्ग क्यों ना हो जाएं, आपके अंदर का बच्चा कभी मरेगा नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने चर्चा की कि किस तरह से बुज़ुर्गों, जिनको हम हमारी फैमिली का पिलर मानते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हम उनके साथ में थोड़ा समय बिताएं, उनके साथ दो शब्द खुशी के बोलें, उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अदर फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, कहीं ना कहीं हर एक सदस्य का घर में रोल होता है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ वो समय बिताए और उन्हें दो पल खुशी के दें। वो आपसे और कुछ नहीं चाहते दोस्तों, बस आपका एक क्वालिटी टाइम चाहते हैं। तो आज से हम अपने आप से वादा करते हैं कि हाँ, आज से हम अपने बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएंगे और उन्हें भी खुशी के दो पल देंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।